फिर उन्होंने सादिया से कहा, देखो तुम अपनी जो भी कीमती चीजें हैं उन्हें संभाल कर रख लेना और नूर से भी कह देना। सादिया ने सिर हिला दिया। और हाँ, जब मैं ज़ुबैदा बेगम के घर जाऊंगी तो वहां भी बता दूंगी कि यहाँ क्लीनिंग चल रही है, रेहाना बेगम ने आगे कहा। सादिया थोड़ी सोच में पड़ गई, फिर बोली, अम्मी आपको अजीब नहीं लगता नूर वहां जाना? इसमें अजीब क्या है, रेहाना बेगम ने बिल्कुल सामान्य लहजे में जवाब दिया। असल में ज़ुबैदा बेगम ने नूर की पसंद का खाना बनाया था और उसे बुला लिया था। ठीक है, सादिया ने धीमे से कहा, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ चल रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अरमान के दिमाग में सादिया की कही हुई बातें बार बार घूम रही थीं। वो सादिया को अच्छी तरह जानता था, वो कैसी है और कब क्या चाल चल सकती है। उसने खुद से कहा, अब सादिया क्या करने वाली है, वो मेरे मन में नूर के खिलाफ गलत फहमी डालना चाहती है, मुझे नूर को समझाना होगा, सादिया उसे किसी मुसीबत में फंसा सकती है। वो नूर और सादिया दोनों के बारे में सोच रहा था। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगाने ही वाला था, उसी वक्त ज़ुबैदा बेगम उसे खाने के लिए बुलाने आ गई। अरमान बाहर लॉन में टहल रहा था, माहिरा अब तक वापस नहीं आई थी, तो वो और ज़ुबैदा बेगम साथ में खाने बैठ गए। खाना शुरू ही हुआ था कि ज़ुबैदा बेगम बोली, मैंने आज नूर को भी बुलाया है, उसकी पसंद का खाना बनाया है। अरमान ने तुरंत कहा, क्या मेरी फिर से जाँच करनी है आपको? उसे लगा कि वो नूर से कुछ पूछताछ करेंगी। तुम हमेशा उल्टा ही सोचते हो, ज़ुबैदा बेगम ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही डर है जांच से तो अपनी हरकतें छोड़ दो। क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? अरमान ने पलटकर पूछा। तुम्हारी हरकतें देखकर कोई यकीन कर सकता है? ज़ुबैदा बेगम ने सख्त आवाज़ में कहा। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, अरमान गुस्से में बोला। तो वो ज्वेलरी किसकी थी और वो हेयरपिन? उन्होंने सीधे सवाल किया। अरमान झुंझला गया, आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं आता? छोड़ो इस बात को, ज़ुबैदा बेगम ने कहा, माहिरा घर पर नहीं है और तुम भी ज़्यादातर बाहर रहते हो, मैं अकेली होती हूँ इसलिए नूर को बुला लिया। इतने में नूर वहाँ आ गई, उसने आकर सलाम किया और चुपचाप बैठ गई। तभी ज़ुबैदा बेगम का फ़ोन बज उठा। तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ, कहकर वो फ़ोन लेकर वहाँ से चली गई। अब वहाँ सिर्फ अरमान और नूर रह गए थे। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे बहुत कुछ कहना हो लेकिन शब्द साथ ना दे रहे हों। उसी वक्त रेहान की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई। उसके फ़ोन में सिर्फ अपने घर ही नहीं बल्कि अरमान के घर के कैमरों का भी एक्सेस था। पहले उसके पास ये एक्सेस नहीं था, लेकिन उस रात जब उसने कैमरों में नूर को सीढ़ियों पर ऊपर जाते देखा था, तभी से उसने दोनों घरों के कैमरे अपने फ़ोन में जुड़वा लिए थे। इस वक्त वो स्क्रीन पर अरमान के घर का हाल देख रहा था, जहां नूर और अरमान साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ये देखकर उसका चेहरा तन गया। कुछ देर तक वो बाहर खड़ा होकर कैमरे में ही उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंदर आया, लेकिन अपने घर में ही, सीधे अरमान के घर में। उधर अरमान नूर से कह रहा था, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नूर, जो अभी भी खाने में लगी थी, लापरवाही से बोली, क्या? पहले वादा करो, जो मैं कहूंगा तुम उस पर रिएक्ट नहीं करोगी, अरमान ने गंभीर होकर कहा। नूर ने ध्यान ही नहीं दिया, पहले बताओ तो, अरमान हल्का सा झुंझलाया। बात तो सुन लो मेरी, वादा करना है तुम्हें तभी तो बताऊंगा। अच्छा बताओ, नूर ने कहा। अरमान अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, जो मैं कहूंगा उस पर रिएक्ट मत करना। ऐसा क्या है? नूर अब भी सहज थी। अरमान ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, सादिया को सब पता चल गया है। क्या? नूर चौंक कर खड़ी हो गई, लेकिन वो तो उस रात मेरे कमरे में थी। बैठ जाओ, अरमान ने उसे होका। उसने नूर के कंधों को पकड़कर उसे वापस बैठा दिया। उसी पल पीछे से आवाज आई, क्या हुआ? दोनों ने मुड़कर देखा, रेहान खड़ा था। अरमान के होश उड़ गए। रेहान भाई, आप? नूर भी घबराकर खड़ी हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान ने खुद सुना है या नहीं। तभी ज़ुबैदा बेगम भी वापस आ गई। आ गई बेटा, काम हो गया? हाँ, रेहान ने जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें लगातार अरमान और नूर पर टिकी थीं। दोनों की नजरें झुकी हुई थीं, जैसे कोई गलती पकड़ी गई हो। अरमान, रेहान को खाना खिलाओ, ज़ुबैदा बेगम ने कहा। मुझे पता नहीं था तुम आने वाले हो, वरना तुम्हारी पसंद का भी बनवाती, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे नूर के आने से तो घर में रौनक आ गई, तुम भी आया करो, तुम्हें रोज बुला लिया करूं। रेहान ने नूर की तरफ देखकर तंज कसा, काफी रौनक लगाने आई हो। नूर चुप रही। माम घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, रेहान ने कहा, आप भी वहीं आ जाइए। उसने ज़ुबैदा बेगम की बात को अनदेखा कर दिया। अरे, तुम्हें आने के लिए इन्विटेशन चाहिए क्या? रेहान ने नूर से कहा। नूर अब भी खामोश बैठी थी। इसे खाना तो खा लेने दो, अरमान ने बीच में कहा, लेकिन रेहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे अरमान की तरफ मुड़ा। सिर्फ तुम्हारे साइन बाकी हैं, बाकी बैंक की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। लेकिन अरमान की साइन क्यों? ज़ुबैदा बेगम ने हैरानी से पूछा। रेहान बोला, क्योंकि सब कुछ अब इसके नाम हो चुका है, इसलिए इसके साइन जरूरी हैं। ये सुनकर अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बनने का एहसास साफ दिख रहा था। उधर नूर अभी घबराई हुई खड़ी थी। चलो, रेहान ने सख्ती से कहा, और नूर बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी।
रेहान और नूर के जाने के बाद अरमान कुछ देर तक वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, हर बात, हर शक, हर इशारा उसे उलझा रहा था। उधर रेहाना बेगम, जो रेहान का इंतजार कर रही थी, लॉन में आ गई। सादिया पहले से ही वहां खड़ी थी। रेहान कहाँ है, रेहाना बेगम ने पूछा। सादिया ने कहा, जब मैं बाहर आई थी तो वो अरमान के घर जा रहे थी। अरमान के घर? रेहाना बेगम थोड़ा हैरान हुई। क्यों, सब ठीक तो है ना, उन्होंने चिंता से पूछा। सादिया ने हल्के से कहा, खैरियत ही होगी, खुशी में भी तो जा सकते हैं। लेकिन उसका मूड साफ खराब था। रेहाना बेगम ने गंभीर होकर कहा, इतनी दूर से आया है और अपने घर आने के बजाय वहां चला गया, कोई तो वजह होगी। तभी दोनों घरों के बीच वाले दरवाजे से रेहान अंदर आता दिखाई दिया और उसके पीछे पीछे नूर भी आ रही थी। सादिया ने हल्के तंज में कहा, पीछे पीछे ही आ रही है। रेहान ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, उसका चेहरा थोड़ा नर्म पड़ा। वो आगे बढ़ा और बोला, अस्सलाम वालेकुम माम। रेहाना बेगम ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके चेहरे से ही सब समझ लेना चाहती हूँ। उधर सादिया का मूड और खराब हो गया था, खासकर नूर को उसके पीछे आते देख। रेहान ने सादिया की तरफ देखा तक नहीं, वो सीधे अंदर चला गया और पीछे खड़ी नूर चुप, सहमी हुई, सब कुछ महसूस कर रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। सादिया ने उन्हें अंदर जाते हुए देखा था। नूर सीधा अपने कमरे में आ गई। वो बहुत परेशान थी, दिल में डर, दिमाग में उलझने। तभी उसका फोन बजा, अरमान का कॉल था। कहो, नूर ने धीमे से कहा। अरमान ने थोड़ा नाराज होकर कहा, मेरे कहने के बावजूद तुम खाना छोड़कर आ गई, कम से कम खाना तो खा लेती। नूर ने समझाते हुए कहा, मैं रेहान भाई को मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए आना पड़ा। हाँ, ये भी ठीक है, अरमान बोला, लेकिन उसका मूड साफ खराब था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। नूर घबरा गई, क्या आपने मेरे लिए खाना ऑर्डर किया है? ऐसा नहीं करना था, अगर रेहान भाई और ताई अम्मी को पता चल गया तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। अरमान ने बेफिक्री से कहा, कुछ नहीं होगा, मैं खुद जाकर रिसीव कर लूंगा। नहीं, आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, मुझे खाना नहीं चाहिए, नूर ने जल्दी से कहा। अरमान हल्का सा मुस्कुराया, मुझे पता है तुम खाना नहीं खाओगी और फिर पूरी रात भूखी रहोगी। नूर अब सच में परेशान हो गई। अरमान, आप नहीं जानते, ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है, प्लीज खाना नहीं चाहिए मुझे।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है?